नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपतियों को मिले चुनिंदा उपहारों की नीलामी ई उपहार पोर्टल के माध्यम से करेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर बढ़कर 670 अरब डॉलर की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। भारत और अमेरिका ने चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। पेरिस में सीन नदी के किनारे भव्य उद्घाटन समारोह के साथ ओलंपिक खेल 2024 शुरू और भारत तथा श्रीलंका के बीच पहला पुरुष टी20 क्रिकेट मैच आज पल्लिकल में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होगी। बैठक का विषय है विकसित भारत एट 2047। एक रिपोर्ट।
बैठक में विकसित भारत पर दृष्टि पत्र के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी जनता के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा होगी। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री आज इस बैठक में भाग लेंगे। अधिकारियों ने कल ये जानकारी दी। पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने बताया कि सभी 8 मुख्यमंत्री राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में सम्मिलित होंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि वे गोवा की मांगों को नीति आयोग के सामने रखेंगे।
डेफिनेटली नीति आयोग में डिफरेंट इश्यूज टेक के डिस्कस होते हैं। इसी तरह से गोवा के भी जो इश्यूज है, गोवा की जो डिमांड्स है, वो नीति आयोग के सामने रखेंगे और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में ऑलवेज सीएम टेक्स द रिव्यू ऑफ द 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स।
राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति को विभिन्न अवसरों पर मिले चुनिंदा उपहारों की ऑनलाइन नीलामी ई उपहार पोर्टल के माध्यम से करेगा। इस पोर्टल की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के अवसर पर किया था। एक रिपोर्ट।
पहले चरण में करीब 250 उपहारों की नीलामी होगी। इसके लिए अगले महीने की 5 से 26 तारीख तक उपहारों के लिए बोली लगाई जा सकेगी। इसके बाद सबसे ऊंची बोली लगाने वाले लोगों को उपहार दिए जाएंगे। लोग upahar.rashtrapatibhavan.gov.in पर बोलियां लगा सकते हैं। उपहारों की बिक्री से प्राप्त धन को जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए दान किया जाएगा। नीलामी के लिए उपलब्ध उपहारों को राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में देखा जा सकता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर बजट 2024 की मूल योजना साझा की है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और कौशल से संबंधित विभिन्न सरकारी घोषणाओं, योजनाओं और नई पहलों को सरल रूप में समझाना है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि बजट 2024 का लक्ष्य नई रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के साथ नौकरियां सृजित करना, एक मजबूत कार्यबल का निर्माण करना और नौकरी प्रदान करने वालों को सक्षम बनाना है। कोई भी व्यक्ति नमो ऐप पर व्हाट्सएप इट सेक्शन में बजट 2024 की मूल योजना देख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माईगव प्लेटफॉर्म के 10 वर्ष पूरे होने पर अपने बहुमूल्य सुझाव साझा कर इस प्लेटफॉर्म को समृद्ध करने वाले सभी लोगों की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में माईगव सहभागी और सुशासन के लिए एक जीवंत मंच के रूप में उभरा है। भारत और अमेरिका ने चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को अमेरिका से वापस लाने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अंतर्गत दोनों देश पुरातात्विक सामग्रियों के अवैध व्यापार, आयात निर्यात और तस्करी को रोकने के लिए साथ काम करेंगे। ये अमेरिका के साथ भारत का पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में कहा कि इससे दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत होगी और अंतर सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
अमेरिका में जो संपत्तियां हैं वो संपत्तियां अब भारत में सुगमता के साथ में वापस लाई जा सकेंगी। ये एग्रीमेंट अमेरिका से प्रॉपर्टी जाने के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस तरह का एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के साथ में होने से आने वाले समय में दूसरे अन्य देशों के बीच में भी इस तरह का एग्रीमेंट हो सके, इसकी संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। तो ये भारत के लिए जो है आज ये एग्रीमेंट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
श्रोता इस पूरे साक्षात्कार को आकाशवाणी गोल्ड पर आज रात 9:15 बजे से सुन सकते हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल लोकतांत्रिक गणराज्य लाओ की राजधानी वियंतियाने में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के विदेश मंत्रियों से भेंट की। डॉ जयशंकर आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच के प्रारूप में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए वियंतियाने में हैं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ताई युल के साथ मुलाकात के दौरान विशेष रणनीतिक साझेदारी पर व्यापक बातचीत हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत दक्षिण कोरिया का साझा तालमेल सहयोग के नए मार्ग खोल रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में बढ़कर 670 अरब डॉलर से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ये बढ़त लगातार तीसरे सप्ताह जारी रही। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भंडार में 4 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। पिछले दो सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार संचयी रूप से 14 अरब 90 करोड़ डॉलर बढ़ गया। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का चालू खाता घटकर 23.2 बिलियन डॉलर यानी सकल घरेलू उत्पाद का 7% हो गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक खेल कल रात शुरू हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ओलंपिक खेलों के शुभारंभ की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 बार के जूडो चैंपियन चेडे रेनर ने ओलंपिक ज्वाला को प्रज्वलित किया।
एक सौ वर्षों बाद ओलंपिक की मेजबानी कर रहे पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों की शानदार शुरुआत कल एक नए अंदाज में शहर के बीच से गुजरने वाली सेन नदी पर कश्तियों में सवार प्रतिभागी दलों की परेड के साथ हुई। 117 खिलाड़ियों के भारतीय दल की अगुवाई 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और 5वें ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे वरिष्ठ टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल ने की। फ्रांस की मशहूर पॉप स्टार आया नाकामुरा और पॉप आइकॉन लेडी गागा की म्यूजिकल परफॉर्मेंस, फ्रांसीसी क्रांति पर आधारित प्रस्तुति के साथ आतिशबाजी और नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। अब सबकी निगाहें खिलाड़ियों पर है। उद्घाटन से पहले ही भारतीय महिला और पुरुष तीरंदाजों ने अपने अपने इवेंट में सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दमदार शुरुआत की। आज रोइंग, शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता में आज स्वर्ण पदक का फैसला होगा और भारतीय निशानेबाजों की 2 टीमें स्वर्णिम शुरुआत के लिए निशाना साधेंगे। पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं शिबू जॉर्ज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि सभी खिलाड़ी अपने असाधारण प्रदर्शन से देशवासियों को प्रेरित करेंगे। भारत और मेजबान श्रीलंका के बीच पहला पुरुष टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से पल्लिकल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 बजे से प्रसारित होगा। 3 मैचों की श्रृंखला के लिए सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का नया कप्तान बनाया गया है। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर कलाम ने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 2015 में आज ही के दिन डॉक्टर कलाम का निधन हो गया था। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 1771 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से आज तड़के रवाना हुआ। इस जत्थे ने 63 वाहनों के काफिले के साथ प्रस्थान किया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कल रात आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उन्होंने दोहराया कि वे हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, कोंकण, दक्षिण आंध्र, कर्नाटक और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी सोमवार तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद कनक। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान तथा पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह से संबंधित समाचार आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना, युद्ध के लिए तैयार रखना। राष्ट्र सहारा ने प्रधानमंत्री का बयान दिया है, सबक सीखने को तैयार नहीं पाकिस्तान, छद्म युद्ध रखे हुए है जारी। पत्र ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड में अग्निवीरों को पुलिस और प्रादेशिक सेना में आरक्षण दिए जाने के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने नीट यूजी के अंतिम नतीजों में टॉपर की संख्या घटकर 17 होने को पहले पन्ने पर दिया है। वहीं दैनिक ट्रिब्यून ने कावड़ रूट पर दुकानों में नाम लिखने के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होने और इस आदेश पर रोक जारी रहने की खबर सबसे ऊपर दी है। पंजाब केसरी की हेडलाइन है, एन इवनिंग इन पेरिस, ओलंपिक का रंगारंग आगाज। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार 85 नावों में आए 7000 एथलीट। राजस्थान पत्रिका ने ओलंपिक से ठीक पहले रेल नेटवर्क पर हमलों से फ्रांस में अफरा तफरी मचने को अपनी पहली खबर बनाया है। अमर उजाला लिखता है, दुनिया भर को 11 अगस्त तक रोमांचित करेंगे खिलाड़ी, शरद सिंधु की अगुवाई में 78 सदस्यीय भारतीय दल ने लहराया तिरंगा। हिंदुस्तान की टिप्पणी है, सीन पर शान से निकली भारतीय सुरमाओं की सवारी।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपतियों को मिले चुनिंदा उपहारों की नीलामी ई उपहार पोर्टल के माध्यम से करेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर बढ़कर 670 अरब डॉलर की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। भारत और अमेरिका ने चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। पेरिस में सीन नदी के किनारे भव्य उद्घाटन समारोह के साथ ओलंपिक खेल 2024 शुरू और भारत तथा श्रीलंका के बीच पहला पुरुष टी20 क्रिकेट मैच आज पल्लिकल में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।